इशिका इस वक्त ओशन यूनिवर्सिटी आई हुई थी। वो कॉलेज के डीन के ऑफिस में थी। डीन प्रोफेसर मिलर पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि इशिका ने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुराया था। ये बात उन तक पहुंच चुकी थी। डीन प्रोफेसर मिलर को निकालना चाहते थे। तभी इशिका को गुस्सा आया और उसने कहा कि डॉक्टर मर्चेंट का आज कोई वजूद नहीं होता अगर प्रोफेसर मिलर नहीं होते। इशिका की बातें सुनकर डीन गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रोफेसर मिलर बस एक मामूली से प्रोफेसर हैं, जबकि डॉक्टर मर्चेंट का न्यू एनर्जी फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान है। इशिका डीन की बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करने ही वाली थी कि तभी लक्ष्य आगे आया और उसका साथ देते हुए बोला, क्या गलत कह रही है इशिका? डीन, आपको इस बात को समझना चाहिए कि प्रोफेसर मिलर ने इस फील्ड को अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल दिए हैं। डीन ने उसे देखकर मुंह बनाया तो लक्ष्य आगे बोला, न्यू एनर्जी का डेवलपमेंट इन्हीं कुछ सालों में हुआ है और तभी डॉक्टर मर्चेंट का नाम निकल कर आया है, जबकि प्रोफेसर मिलर तो न जाने कितने सालों से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके डॉक्टर मर्चेंट ने भी इन्हीं से स्टडी की हो या इनसे ही इंस्पायर हुए हों। अगर डॉक्टर मर्चेंट भी यहाँ आ जाएंगे तो प्रोफेसर मिलर को अपना सीनियर समझकर उनकी इज्जत करेंगे। डीन अपनी ही बातों के जाल में फंस गया था। ये सच था कि प्रोफेसर मिलर लगभग 35 साल से भी ज़्यादा टाइम से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे और उनके पढ़े स्टूडेंट इस वक्त काफ़ी तरक्की भी कर रहे थे। डीन ने दरवाजे के बाहर खड़े स्टूडेंट को देखा जो प्रोफेसर मिलर के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो सब उसे गुस्से में घूर रहे थे। डीन कुछ पल रुका और इस बार शांत स्वर में बोला, ठीक है, मुझे प्रोफेसर मिलर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फ्यूचर में उनकी जो भी रिसर्च होगी वो हम सबके काम आएगी और देश की तरक्की में भी उनका हाथ रहेगा। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इशिका सिंघानिया, एक इतने महान आदमी का प्रोजेक्ट तुमने चुरा लिया? इशिका उनकी तरफ सख्ती से देख कर कहा, मैंने उनका प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। डीन ने उसे देख कर तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। राजवंश एम्पायर के पास पूरे सबूत हैं। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, लेकिन सबूत के दम पर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हें ऑफिशियली अपने कॉलेज से निकाल दूंगा और फिर एक स्टेटमेंट जारी करूंगा कि इशिका सिंघानिया की गलत हरकतों की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ओशन यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट के गलत व्यवहार को सहन नहीं करता है। डीन की बातें सुनकर प्रोफेसर मिलर गुस्से में बोले, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी इशिका सिंघानिया पर लगा इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक आप इसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकते हैं। डीन ने कुछ पल सोचा और कहा, चलिए आपकी बात मानकर मैं मिस सिंघानिया को डॉक्टर मर्चेंट के मामले से अलग कर देता हूँ। वो पूरा मामला राजवंश एम्पायर पर डिपेंड करता है। फिर भी मेरे पास इस कॉलेज से निकालने का हक है। ये टाइम पर क्लास अटेंड नहीं करती है, इसके मार्क्स भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं, कई बार तो इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, इस वजह से इसे जीरो तक मिला है। इसके इसी गलत बिहेवियर के चलते मैं इसे यूनिवर्सिटी से निकालने वाला हूँ। डीन की बातों से साफ था कि वो इशिका को किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने पर तुला हुआ था। उसकी बातें सुनकर इशिका हैरान रह गई। सिर्फ वो अकेली नहीं थी जिसने क्लास बंक की थी, अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते रहते थे। दूसरी बात, इशिका ने प्रोफेसर की क्लास इसलिए अटेंड नहीं की क्योंकि वो बेसिक चीज़ें पढ़ाते थे और वो सब कुछ इशिका काफ़ी पहले सीख चुकी थी। इसके बजाय उसने अपना टाइम नया कुछ सीखने में बिताया था। असाइनमेंट में भले ही उसे जीरो मिले हों, लेकिन फाइनल एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लाकर कवर कर लेती थी। इसी वजह से प्रोफेसर ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। उसने सोचा नहीं था कि ये सब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इशिका अब शांत हो गई थी क्योंकि गलती उसकी ही निकाली जा रही थी। प्रोफेसर मिलर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में बोले, अपनी मनमानी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं नाडीन, लेकिन जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर आप इशिका सिन्हानिया को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर मिलर भी अपनी जिद के पक्के थे। वो इशिका का साथ दे रहे थे। ये देखकर डीन का चेहरा सर्द हो गया। वो बिना किसी दया के बोले, बहुत अच्छे प्रोफेसर मिलर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे स्टूडेंट का साथ देंगे। कोई बात नहीं, आपको इसका साथ देने का इतना ही शौक है तो मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर दीजिए। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको भी काम से निकाल दूंगा। डीन अब उनको ही धमकी देने पर उतर आया था। प्रोफेसर मिलर गुस्से में फट पड़े। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम्हें मुझे कॉलेज से निकालना है तो निकाल दो। ठीक है, यही सही। मुझे नहीं पता था कि आप इतने सेल्फिश हो जाओगे। आपकी वजह से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सफर करेंगे। ऊपर से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास 10 स्टूडेंट है। सोचो कि उनका एक साल बर्बाद हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा प्रोफेसर मिलर? डीन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। डीन की बातें सुनकर सब सकते में आ गए थे। प्रोफेसर मिलर एक अच्छे इंसान थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके अंडर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक साल खराब हो। प्रोफेसर मिलर ने सक पका कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, डीन ने उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहा। वो उनके स्टूडेंट का सहारा लेकर इशिका को एक्सपेल कराना चाहता था। प्रोफेसर मिलर सोच में पड़ गए थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट की तरफ देखा जो लाचारी से उनकी तरफ देख रहे थे। वहां किसी ने नहीं सोचा था कि डीन अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक चल जाएगा।
डीन ने आगे कहा, सोच लीजिए प्रोफेसर मिलर, आपको एक स्टूडेंट को चुनना है या फिर 10 स्टूडेंट्स को। गुस्से से प्रोफेसर मिलर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने एक नज़र स्टूडेंट की तरफ देखा। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ की बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप मिल गई थी, बस वो अपने स्टडी कंप्लीट करने का वेट कर रहे थे। तो कुछ शादी करके सेटल होना चाहते थे, बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का इंतजार था उन्हें। प्रोफेसर मिलर बुरी तरह फंस गए थे। तभी यशिका ने प्रोफेसर मिलर से पूछा, क्या कोई और सीनियर अथॉरिटी यहाँ मौजूद नहीं है? प्रिंसिपल, डायरेक्टर और चांसलर इस वक्त एक सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, प्रोफेसर मिलर ने बताया। इशिका को समझ में आ गया था कि डीन अपनी मनमानी क्यों कर रहा था। उसे डांटने फटकारने वाला कोई नहीं था। इशिका ने गहरी सांस ली और प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चले जाइए, जब वो वापस आ जाएंगे तब इस मामले पर बात करते हैं। इशिका ने बीच का रास्ता निकाला था। अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती तो डीन मानता नहीं, और प्रोफेसर छुट्टी पर चले जाते तो मामला कुछ दिनों के लिए टल सकता था। प्रिंसिपल और बाकी अथॉरिटी के आगे डीन की नहीं चलनी थी। वैसे भी मंडे तक इशिका की सच्चाई सबके सामने आ ही जानी थी। कुछ भी कहने से पहले प्रोफेसर ने एक नज़र अपने स्टूडेंट की तरफ देखा, जो काफी उम्मीदें लगाकर खड़े थे। मिलर उन्हें आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि चाहे उन्हें निकाल भी क्यों ना दिया जाए, लेकिन वो उनका एक साल बर्बाद नहीं होने देंगे। इशिका ने प्रोफेसर से कहा, मंडे तक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सर, तब हम इस पर बात करते हैं, तब तक आप वेकेशन पर जा सकते हैं, वैसे भी वीकेंड चल रहा है। स्टूडेंट को अब इशिका पर गुस्सा आ रहा था। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था, ऊपर से वो प्रोफेसर को छुट्टी लेने के लिए कह रही थी। लक्ष्य ने गुस्से में खड़े स्टूडेंट के चेहरे को देखा और फिर इशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दबी आवाज में कहा, क्या कह रही हो इशिका, अगर तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो उल्टी सीधी एडवाइस तो मत दो।
इशिका उसे जवाब देते उससे पहले प्रोफेसर ने डीन से वीकेंड पर छुट्टी मनाने का कहा और वहां से बाहर आ गए। इशिका भी उनके साथ में थी। इशिका ने उन्हें घर छोड़ने की जिद की तो वो उसके साथ गाड़ी में आ गए। रास्ते में प्रोफेसर ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, इशिका मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन इस बात पर कौन यकीन करेगा कि डॉक्टर मर्चेंट जैसे इतने बड़े आदमी तुम्हारा प्रोजेक्ट चुरा सकते हैं? तुम राजवंश एम्पायर में सबका सामना कैसे करोगी? तुम्हारी रेपुटेशन दांव पर लगी है बेटा। प्रोफेसर मिलर इशिका को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें इशिका की कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। उनके हिसाब से डॉक्टर मर्चेंट ही वो इंसान थे जिन्होंने इशिका के प्रोजेक्ट को चुराया था। उनकी बात सुनकर इशिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। वो बोली, लेकिन प्रोफेसर, डॉक्टर मर्चेंट ने मेरा प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। प्रोफेसर मिलर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो फिर उस प्रोजेक्ट को किसने पूरा किया था? मैंने। फिर इशिका कुछ पल रुककर बोली, या यूं कह सकते हैं कि डॉक्टर मर्चेंट ने। इशिका ने सब कुछ काफी नॉर्मली कहा था। प्रोफेसर को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका घर आ गया था। उसके बाद इशिका हॉस्पिटल लौट आई थी और उसने अपना टाइम वसुधा के साथ स्पेंड किया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त वसुधा के रूम में मौजूद दूसरे अटैच रूम के अंदर काम कर रहा था। उसके साथ में पृथ्वी था और उसने अभिमन्यु को वो सब बता दिया जो यूनिवर्सिटी में हुआ था। पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया का बर्ताव काफी अजीब है और अब तो सबको पता चल गया कि उनके ऊपर प्रोजेक्ट चोरी करने का इल्जाम लगा है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर सब कॉमेंट्स में उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। बोलते हुए अभिमन्यु ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा तो पृथ्वी उसे कॉमेंट पढ़कर सुनाने लगा। पृथ्वी ने कॉमेंट पढ़ते हुए कहा, एक यूजर ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रोफेसर मिलर एक चोर का साथ क्यों दे रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि उसकी वजह से हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए और साथ ही राजवंश एम्पायर से भी। एक और शख्स ने लिखा है, ऐसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं, इन्हें जीने तक का हक नहीं। अभिमन्यु ने महसूस किया कि ये मैटर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक हॉट टॉपिक बन गया था और सब इशिका को कसूरवार मानते हुए उसे ही भला बुरा कह रहे थे। अभिमन्यु चुपचाप पृथ्वी की बातें सुन रहा था। पृथ्वी ने आगे कमेंट्स पढ़ते हुए कहा, मैं तो वहीं पर था और मैंने सभी लोगों की बातें सुनी थी। प्रोफेसर मिलर उसके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लगता है उस लड़की को प्रोफेसर मिलर के इस बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है। वो सबके सामने उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कह रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रोफेसर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो ऐसे कह भी कैसे सकती है। अभिमन्यु ने पृथ्वी के हाथ से मोबाइल लिया। उसने देखा कि एक कमेंट आया हुआ था, वो स्टूडेंट काफी बदकिस्मत है जिसे ऐसे टीचर मिले और साथ ही एक ऐसी लड़की उनकी क्लासमेट है जो दूसरों के प्रोजेक्ट चुराती है। उन सबके कमेंट सुनते ही अभिमन्यु का चेहरा सर्द हो गया। उसने मोबाइल वापस पृथ्वी को दिया और सख्त आवाज में बोला, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, गांव का एक कुत्ता भौंकता है तो गांव के बाकी कुत्ते उसके पीछे भौंकने लगते हैं। पृथ्वी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि अभिमन्यु के शब्द काफी सख्त थे। वो उन स्टूडेंट्स को कुत्तों से कंपेयर कर रहा था। पृथ्वी ने बात बदलते हुए कहा, अगर मैं सिंघानिया ने इन कमेंट्स को पढ़ा तो वो काफ़ी उदास होगी। मैंने और भी लोगों के कमेंट पढ़े थे, वो बहुत भला बुरा कह रहे थे उन्हें, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है मिस सिंघानिया कॉलेज की वेबसाइट चेक करती होगी? वो उम्र में काफ़ी कम है और आजकल इस उम्र में सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गॉसिप के मामले में कुछ ज़्यादा ही। पृथ्वी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो नहीं देखता, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा। पृथ्वी ने अभिमन्यु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने मन में बोला, क्योंकि आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है और आप अपनी उम्र से ज्यादा ही मैच्योर हो गए हैं। अब आपको कौन समझाए कि आपकी उम्र के लोग मौज मस्ती करते हैं, ना कि इस तरह काम में डूबे रहते हैं। पृथ्वी ने देखा कि अभिमन्यु उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, तो वो बोला, मैंने कहा ना, आजकल की ज्यादातर जेनरेशन को ऑनलाइन रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, अभिमन्यु बोला और फिर वसुधा के कमरे में आया। अभिमन्यु ने देखा बाहर का मौसम काफी सुहावना हो रहा था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। इशिका ने इस वक्त एक ब्राउन कलर का पतला जैकेट पहना हुआ था, वो सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी, जिस वजह से बाल बार बार उसके मुंह पर आ रहे थे। इशिका उन्हें अपने कान के पीछे कर रही थी। इशिका के पास ही बिल्लू खेल रहा था। कमरे में काफी शांति थी और वो माहौल सुकून देने वाला था। काफी देर तक पढ़ने के बाद इशिका थक गई तो उसने बुक को साइड में किया और अपना मोबाइल हाथ में लेने लगी। अभिमन्यु जल्दी से इशिका के पास गया और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, तो वहीं वसुधा भी चौंक गई थी कि अचानक उसके पोते को क्या हो गया जो वह ऐसी हरकतें कर रहा है। इशिका को अभिमन्यु की कितनी परवाह है जो वो उसे मोबाइल तक यूज करने नहीं दे रहा है। देखते हैं वो उसे कैसे रोक पाता है। रही बात इशिका की सच्चाई सामने आने की, तो मंडे का बोला है उसने और बीच में वीकेंड है, ड्रामा एंजॉय कीजिए, सच्चाई सामने आने का मजा दोगुना हो जाएगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।